हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। विधिक आंशी का दिल रखने के लिए उसे बाहर रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेकर आया था। विधिक आंशी को लेकर जिस रेस्टोरेंट में पहुंचा था वो काफ़ी शानदार था। वहाँ गिने चुने ही लोग थे, वो भी वहाँ काम करने वाले थे। विधिक ने आंशी के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स करवाए थे, इसलिए वो उसे लेकर ऊपर हॉल में पहुंचा। हॉल के बीचों बीच एक टेबल लगा हुआ था, बाकी पूरे हॉल को लाइट्स और बाकी चीज़ों से डेकोरेट किया गया था। वो काफ़ी एस्थेटिक फील दे रहा था। उसे देखकर आंशी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने विधिक का हाथ पकड़कर कहा, थैंक यू सो मच मेरे लिए इतनी प्रेपरेशन करने के लिए, इट्स रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी। विधिक ने आंशी के हाथ को ऊपर किया और उस पर हल्के से किस करके कहा, तुम्हारे लिए कुछ भी बटरफ्लाई, डिनर से पहले एक डांस तो बनता है। आंशी ने उसकी बात पर हामी भरी। विधिक ने सारा अरेंजमेंट पहले ही करवा रखा था, इस वजह से उनके वहाँ जा बीच में आते ही स्पॉटलाइट उन पर आ गई और एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले हुआ। डांस करते हुए विधिक ने आंशी को उसके कमर से पकड़ा और फिर उसकी आंखों में देखते हुए सिंग किया, कैसे बताएं कैसे जताएं, सुबह तक तुझ में जीना चाहें, भीगे लबों की गीली हंसी को पीने का मौसम है पीना चाहें। अचानक विधिक ने कमर से पकड़कर आंशी को बिल्कुल करीब कर लिया। उन दोनों के नाक जुड़े हुए थे और विधिक उसकी आंखों में देखते हुए बोला, एक बात कहूँ क्या इजाज़त है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। एक बात कहूँ क्या इजाज़त है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। आदत है ओ ओ आदत है, आदत है ओ ओ आदत है। डांस करते हुए विधिक का हाथ आंशी के गाल पर चल रहा था और वो काफ़ी इंटेंसली उसे देख रहा था। एहसास तेरे और मेरे तो एक दूजे से जुड़ रहे, एक तेरी तलब मुझे ऐसी लगी मेरे होश भी उड़ने लगे। मुझे मिलता सुकून तेरी बाहों में जन्नत जैसी एक राहत है। एक बात कहूँ क्या इजाज़त है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। एक बात कहूँ क्या इजाज़त है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। एक बात कहूँ क्या इजाज़त है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। एक बात कहूँ क्या इजाज़त है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। आदत है ओ ओ आदत है, आदत है ओ ओ आदत है, तेरी आदत है। डांस खत्म हो जाने के बाद विधिक और आंशी टेबल पर थे। वहाँ सब कुछ आंशी का फेवरेट रखा हुआ था और विधिक ने हर एक डिश काफ़ी तैयारी के साथ बनवाई थी। आंशी काफ़ी दिनों बाद बाहर आई थी तो वो खाने में बिजी थी, जबकि विधिक कुछ भी खाने के बजाय आंशी के चेहरे की तरफ देख रहा था। आंशी को खुश देखकर उसे दिल ही दिल में सुकून मिल रहा था और उसने अपने मन में कहा, इस बार धोखा मत देना बटरफ्लाई, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा है तो तुम्हारे एक धोखे से सबको बर्बाद कर दूंगा, खासकर तुम्हारी पूरी फैमिली और तुम्हारे उसे सो कॉल्ड हस्बैंड को। तभी अचानक आंशी का ध्यान विधिक की तरफ गया, जो चुपचाप बैठे उसी की तरफ देख रहा था। आंशी ने सिर हिलाकर विधिक से कहा, कहाँ खोए हुए हो, खाना खा लो। बस तुम्हें देख रहा हूँ और तुम्हें इस तरह खुश देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है बटरफ्लाई। वैसे तुम्हें जानकर खुशी होगी कि अब मुझे तुम पर यकीन हो गया है तो हम एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, विधिक ने हल्का मुस्कुराकर कहा। आंशी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। तभी विधिक ने आंशी का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। विधिक आंशी के सामने अपने एक घुटने पर बैठा हुआ था, जैसा किसी को प्रपोज करते टाइम अक्सर लड़के बैठते हैं, और उसने अपने ब्लेजर के पॉकेट से एक बॉक्स निकाला। वो किसी रिंग का बॉक्स था। विधिक ने आंशी का हाथ पकड़कर उसे रिंग पहनाते हुए कहा, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बटरफ्लाई मेरी जुनून की आखिरी हद तक तुमने देखी है, तुम मेरे लिए मेरा सब कुछ बन गई हो। लेट्स गेट मैरिड बटरफ्लाई। विधिक ने आंशी को शादी के लिए प्रपोज किया था। जैसे ही विधिक ने शादी का कहा, आंशी को झटका सा लगा, लेकिन उसने अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया। आंशी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। विधिक खड़ा हुआ और आंशी के गले लग गया। विधिक ने आंशी के बालों में हाथ घुमाते हुए कहा, आई रियली लव यू बटरफ्लाई, तुम जैसे जिस तरह की शादी चाहोगी हम वैसे ही किसी अच्छी जगह पर जाकर शादी करेंगे। डिनर के बहाने आंशी विधिक ने अपने दिल की बात कह दी थी। दूसरी तरफ अमन पूरे दिन सोने के बाद शाम के करीब नींद से जगा था। अमन तैयार होकर रूम से बाहर निकला ही था कि चेतना जी ने उसे आकर बताया, अर्जुन उसे मिलने के लिए आया है। विधिक की आंशी को वहां से ले जाते ही अमन ने अपनी फैमिली और आंशी की फैमिली को वापस बुला लिया था, जिनमें अर्जुन भी था। अर्जुन से बात करने के लिए अमन गेस्ट रूम में पहुंचा। उसके वहां आते ही अर्जुन ने उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए गुस्से में पूछा, आंशी कहाँ है अमन, मैं बिजी नहीं हूँ और ना ही तुम्हारी फैमिली, जिसे तुम ये बहाना देकर बेवकूफ़ बना सकते हो कि वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर गई है। तुम इन सब चीज़ों को नहीं समझोगे और ना ही तुम्हें कुछ पता है। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें नहीं बता सकता आंशी कहाँ है,
बस ये समझ लो वो जहां भी है ठीक है, अमन ने शांत लहजे में जवाब दिया। अमन अपनी आइडेंटिटी अर्जुन के सामने रिपीट नहीं कर सकता था और ना ही वो इस बारे में कुछ जानता था। अर्जुन को अमन की आइडेंटिटी पर तो शक नहीं हुआ, लेकिन आंशी कहाँ हो सकती है ये समझते उसे देर नहीं लगी। ऊपर से अमन का चेहरा भी उतरा हुआ था। अर्जुन ने गुस्से में अमन की कॉलर पकड़कर कहा, वो उसे क्रिमिनल विधिक राणा के साथ ठीक कैसे हो सकती है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने उसे विधिक के पास भेज दिया, तुम्हें आइडिया भी है वो उसे कितना डरती है। अरे उसने उसके दोस्तों को मार दिया। तुम्हें कैसे पता आंशी विधिक के साथ है, अमन ने हैरानी से पूछा। उसे इस बात का डर था कि कहीं आंशी ने अर्जुन के सामने उसकी आइडेंटिटी तो रिवील नहीं कर दी। उससे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, वो बंदा यहाँ चंडीगढ़ में घूम रहा था तो उसका और क्या मतलब हो सकता है, मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम कोई एक्शन नहीं ले रहे हो तो मैं पुलिस स्टेशन जाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाता हूँ, अर्जुन ने अमन की कॉलर छोड़कर जवाब दिया। वो वहां से जाने लगा, तभी अमन तेज कदमों से चलकर उसके सामने आ गया।